अपने मंगल में स्थान रख ले। आध्यात्मिक प्रवचनों से हम सबको प्रसाद करें और कुछ 108 समाधान रखें।
नमोस्तु अपराणिक पूर्वानिक श्री स्वाध्याय विलायम श्री शुद्ध भक्ति का सुप्रम कर
तीर्था सरस्वती हरतिनो दुरितम् अज्ञान तिमरान ध्यानान ज्ञानान जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितम् येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम पराचारि गुरुभ्यो नमः। सकल कलुषु विध्वंसकम् श्रेयसाम् परिवर्धकम् धर्म संबंधकम् भव्य जीव मनः प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री रत्नकरंडक श्रावकाचारणामधीयम् अस्य मूल ग्रंथकर्तारः श्री सर्वज्ञ देवास्तदुत्तर ग्रंथकर्तारः श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनोनुसारमासाद्य श्रीमत् समंत भद्राचारी देवैर्विरचितम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम् प्रधानम सर्वधर्मानाम जैनम जयतु शासनम् कोटिशतम द्वादशैव कोट्यो लक्षणानि सीतिस्त्रधिकानि चैव पञ्चाशदष्टौ च सहस्र संख्या मेतश्रुतं पञ्चपदं नमामि हरिहंतवासि अत्थम गणधर देवे गंतियं सम्मं पणमामि भक्तियुक्तो सुदनान मगो वयं शिरसा। इच्छाएं बनते सुध भक्ति का उत्सुको को दशालोचिम अंगों अंगों पहिने पाऊने परियम सुत पणिमाणि उपभोग गए चूलिया चेई सुत तत्तय सुविधम कायम सानी चुकाल मंचे में पूजे में वंदा मी नमन सामी दुखो को कम खो वही लाओ सुगे गुणम समाई गुणम जिन गुण संपत्ति को उच्चम। अत नमोस्तु पूर्वानेक श्री स्वाध्याय विलायम श्री आचार्य भक्ति कह सुप्रम शुद्ध जलधि पार केभ्या स्वपर मद विभावना पटुमतीभ्या सुचरित तपोनिधिभ्यो नमो गुरुभ्यो गुण गुरुभ्या छत्तीस गुण सम्मग्गे पंच विहाचार करण संदर्शे शिष्यानुगे कुशले धम्मायरिय सदा वंदे गुरु भक्ति संयमे नया तरंति संसार सायरम घोरम शिन्नन्ति अच्युकम मम जम मरणम न पावेन्ति ये नित्यम व्रत मंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरतास्तपोधन धना साधु क्रिया साधुवा शील प्राभरणा गुण प्रहरणाश्चंद्रार्क तेजोधिका मोक्षद्वारक पाठ पाटन भटा पीनन्तु माम साधुवा गुरुवः पान्तु नो नित्यं ज्ञान दर्शन नायकाः चारितारणौ गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका। इच्छाई वंते आयरी भक्ति का उसको को दसालोजिम समनान समुदन समचरे चुत्तानम पंच विहाचारणम आयरियानम आयरादि सुदनान उपदेशानम मध्यायानम तिरण गुण पारंदयानम सब साहूनम सयानि चुकालम अंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुखो को कम को वैलाओ सुगे गुणम समाय गुणम जिन गुण संपत्ति को। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणान्ते। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य समंत भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की। ये रत्नकरंडक श्रावकाचार आचार्य समंत भद्र स्वामी का अपन पढ़ रहे हैं। हमने इन दिनों बैठ करके ये विचार किया है कि जीवन में यदि धर्म की शुरुआत करनी है तो सच्ची श्रद्धा से ही धर्म की शुरुआत होगी।
और सच्ची श्रद्धा के मायने हैं सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति अनुराग। यह सामान्य सी परिभाषा बना लें कि सच्चाई के प्रति अनुराग, वास्तविकता के प्रति अनुराग। इन दिनों अगर हम गौर से देखें तो जैसे साइकोलॉजी में लिखा है कि डेनाइल ऑफ रियलिटी, अधिकांश लोग वास्तविकता से पलायन करते हैं। वे जानते हैं कि शरीर एक दिन छूट जाएगा, तब फिर भी उस शरीर के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए ये नहीं सोच पाते हैं। जो चीज हमसे छूट जाएगी उसके साथ हम कैसा व्यवहार करते हैं, मेरे ख्याल से तो आप अच्छे से जानते होंगे। ट्रेन में जाते हैं, किसी से बाजू में बैठा हुआ उससे परिचय हो जाता है और इतना घनिष्ठ परिचय हो जाता है, फिर भी मन में ये तय रहता है कि इसका स्टेशन आने पर ये उतर जाएगा। ये मित्रता ज्यादा दिन नहीं चलने वाली, ज्यादा देर नहीं चलने वाली। तब उससे कितने बढ़िया से बात करते हैं पूरा कि बस अब दो घंटे बाद तो इसको दूसरे स्टेशन पर उतर ही जाना है, मेरी और इसकी यात्रा इतनी देर की है तो क्यों ना हम प्रेम से इसके साथ बात कर लें। बस ऐसा ही है, यदि हमें वास्तविकता मालूम पड़ जाती है तो हमारा व्यवहार बदल जाना चाहिए, और यदि व्यवहार नहीं बदलता है तो मानिएगा कि वास्तविकता का एहसास हुआ नहीं है। ये कसौटी है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है, अगर उनके प्रति अनुराग है, या कि सात तत्वों का जैसा स्वरूप भगवान ने कहा है उसके प्रति यदि हमारी श्रद्धा है तो हमारे व्यवहार में परिवर्तन आए बिना नहीं रहेगा। चाहे उसको आप सदाचार कहिएगा, चाहे सम्यक चारित्र कहिएगा, सम्यक चारित्र तो बाद को आएगा लेकिन सदाचार आए बिना नहीं रहेगा। अनर्गल प्रवृत्तियां छूट जाएंगी, उसकी चाल में फर्क आ जाएगा, उठने बैठने और बोलने में फर्क आ जाएगा। मैं तो आपसे ये कहता हूं अगर वास्तविकता का बोध हो गया, जिसको भाव भासना शब्द कहा है, घट कहते ही साथ, जैसे कि घट कैसा होता है और पानी अवधारण करने की उसकी क्षमता होती है, जैसे घट शब्द सुनते ही ऐसा भाव आता है, ऐसे ही जीव शब्द सुनते ही, आत्मा शब्द सुनते ही मेरा स्वरूप क्या है, मेरी स्वभाव क्या है, इस वास्तविकता का यदि बोध हमें हो गया है तो फिर बताइएगा कि हम जीव के साथ कैसा व्यवहार करेंगे और शरीर के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। दोनों को अलग अलग मान के व्यवहार करना और दोनों को मिले जुले एक मान करके व्यवहार करना, दोनों के व्यवहार में कुछ तो फर्क होगा। एक बहिरात्मा है और एक अंतरात्मा है। अंतरात्मा वो है जिसने कि शरीर और देह, शरीर और आत्मा के बीच का फर्क, उसके भीतर की जो, उसके बीच का जो ज्वाइंट है उसने वो पहचान लिया है, तब उसका व्यवहार कैसा होगा। एक बेटा जो है वो चले जा रहा था, धोबी का बेटा था, वो अपने गधे पर सामान लिए हुए चले जाता था। उसने रास्ते में एक ठो देखा कि बहुत चमकदार सा पत्थर पड़ा हुआ है, तो वो उठा लिया उसने और उससे खेलने लगा। उसने सोचा कि बाद में जाकर के इसको गधे के गले में बांध देंगे, जरा सुंदर दिखाई पड़ेगा और जब तक अपने हाथ में तब तक खेलो। तो वो खेल रहा था उससे, एक नजदीक से जो है वो जोहरी निकला। उसने देखा कि ये ऑर्डिनरी स्टोन नहीं है, ये तो जेम स्टोन है, जवाहरात है, ये तो कीमती चीज है। तो उसने उस बेटे से कहा कि तुम जानते हो इसकी कीमत क्या है। उसने कहा क्या कीमत है, खेलने के काम आ रहा, कोई बड़ी भारी चीज थोड़ी। उसने कहा नहीं, तुम नहीं जानते, मैं हीरे जवाहरात पहचानता हूं, ये बहुत कीमती है, हजारों रुपए की कीमत है। जिस बेटे ने एक रुपया इकट्ठा ना देखा हो उससे ये कहा जाए कि हजार रुपए कीमत है तो बहुत चौंका वो। और अब मालूम अब क्या कर रहा था वो, अब वो फेंक नहीं रहा, अब तो उसने अपने मुट्ठी में दबाया है और पॉकेट में हाथ डाले है और चुपचाप चला जा रहा है वो। क्या इसका आशय हुआ, जब तक उसकी कीमत नहीं मालूम थी तब तक फेंक भी रहे थे, उछाल भी रहे थे, खेल रहे थे उससे, और नाहक पड़ी हुई चीज है ऐसे ही ये सोच करके उसके साथ व्यवहार कर रहे थे। और जब ये मालूम पड़ गया कि ये चीज तो बहुत कीमती है तो अब उसको संभाल करके रख रहे हैं। अगर हमें बोध हो गया है तो हमारे व्यवहार में फर्क आए बिना नहीं रहेगा। उतने छोटे से चीज का बोध हो जाने के बाद उसके प्रति जो हमारा व्यवहार है वो बदल जाता है। तो अगर हमें अपनी आत्मा और भगवान के द्वारा कहे गए सात तत्वों का बोध हो गया है, एक जगह तो लिखा हुआ है कि यो यस न जानाति स तस्य निंदाम करोति, जो जिसे नहीं जानता है वही उसकी निंदा करता है।
अगर हम सच्चे देवगुरु शास्त्र का स्वरूप जानते हैं और सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति हमारी श्रद्धा है तो हमारे मन में निंदा का भाव ही नहीं आ सकता है। और यदि निंदा का भाव आता है तो यो यस न जानाति स तस्य निंदाम करोति, जो जिसे नहीं जानता है वो ही निंदा कर सकता, जानने वाला वस्तु स्वरूप को तो निंदा कर ही नहीं। उसके मन में तो कोई संदेह उत्पन्न हो ही नहीं सकता, भगवान के कहे हुए में संदेह नहीं उत्पन्न हो सकता है। जो सच्चा रास्ता है उसको लेकर के उसकी दृष्टि बहुत क्लियर है, उसको कहीं कोई संदेह नहीं। ये उसके भीतर अपने आप आने वाली क्वालिटी है, जो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपन रोज रोज ये चीज जान रहे हैं और हम अपने भीतर देखें कि क्या प्रकट हो रहा है, किसी चीज के आ जाने से क्या हमारे भीतर परिवर्तन आते हैं, अगर आया है तो। यदि थोड़ा भी परिवर्तन आता है तब तो हमारी इस सब चीजों की सार्थकता है, वरना तो मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, रोज आपको याद दिलाता हूं कि मेरे से भी पहले लोग आए हैं जिन्होंने आपसे कहा है, मेरे जाने के बाद भी लोग आएंगे जो आपसे बातें कहेंगे, इसके बाद भी आप कब तक सुनते रहिएगा, किस किस से सुनते रहिएगा। एक बार आप अपने आप क्यों नहीं तय कर लेते हैं कि हमारा तो स्वरूप ये है और अब हमको जो करना है वो हम शुरू करते हैं करना। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं, हम अपने भीतर झांक करके देखें कि कहां क्या, कौन सी ग्रंथि हमारे, कौन से कॉम्प्लेक्स पड़े हुए हैं, जो कि उस सबसे बड़ी ग्रंथि होती है तो मिथ्यात्व की ग्रंथि होती है। और मिथ्यात्व के मायने ज्यादा कठिन नहीं है कि जो जो चीज जैसी नहीं है उसको वैसी मान करके पूरी जिंदगी गुजार देना, उसी भ्रम में गुजार देना और अपनी वास्तविकता का एहसास नहीं हो पाना। और अगर वास्तविकता का एहसास हो गया है तो व्यवहार नहीं बदलता है, तब भी प्रश्न चिन्ह तो लगता ही है। इसलिए इस चीज को भी हम अलग नहीं करें, हम लोग बहुत जल्दी अलग कर लेते हैं कि श्रद्धा वाला खाना अलग है, ज्ञान वाला खाना कुछ अलग है, आचरण वाला खाना कुछ अलग है। क्या आदमी इस तरह से तीन में डिवाइड है क्या? वो जिस जगह से श्रद्धा करता है उस जगह से वो ज्ञान नहीं करता क्या? जिस जगह से वो श्रद्धा और ज्ञान करता है उसका आचरण का पहलू कुछ अलग है क्या? वो तो तीनों एक में एक चीजें हैं। जब हम तीनों को एक साथ प्ररूपित करते हैं वही निश्चय सम्यक दर्शन होता है, जब हम तीनों को तीन अलग अलग करते हैं तो सम्मत नान दंशन दंशन नान चरित्ता निसे भी दब्वाणी साहुना निच्चम तानी पुन जान तिन्न भी अपानम चेव निच्छय दो। वैसे तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्ररूपना तीनों की अलग अलग होगी, लेकिन अपानम जीव निश्चय दो अगर देखा जाए तो वे तीनों तीन नहीं है, वे एक ही हैं, क्योंकि वे एक ही आत्मा के आश्रित हैं। तो क्यों हम ऐसा सोचते हैं कि अभी तो हमारी श्रद्धा ही हुई है, अब बाद में हम देखेंगे, हमारा व्यवहार चाहे जैसा रहा आवे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा मत सोचिएगा, व्यवहार तो परिवर्तित हुए बिना रहेगा ही नहीं। एक मिथ्या दृष्टि की क्रियाओं में और एक सम्यक दृष्टि की क्रियाओं में कोई फर्क नहीं रहेगा। सोचिएगा, एक मंदिर जाने वाले की क्रिया में और एक मंदिर नहीं जाने वाले की क्रिया में कोई फर्क नहीं रहेगा। आज हुआ तो यही है ना कि हम मंदिर भी जाते हैं, हमारी श्रद्धा भी, इसके बाद भी हमारा व्यवहार नहीं बदलता। तो देखने वाला सोचता है हम चाहे जितनी प्रभावना कर लें भैया, उस प्रभावना का कोई असर नहीं होता है। प्रभावना तो वो कहलाती जो हमारे जीवन में से घटित होती। आज अपन पढ़ेंगे ये चीज कि हम जो इस तरह से ताम झाम जोड़ करके और पैसा खर्च करके सोचते हैं कि हम प्रभावना कर लेंगे, मानिएगा वो भी एक पहलू है, हो सकता है, लेकिन पहले तो अंतरंग में घटित होना चाहिए। और ये चीज हम लगातार मिस कर रहे हैं, इस चीज से हम लगातार चूक रहे हैं। ये हमें थोड़ा सा और विचार करना पड़ेगा कि हमारे भीतर व्यवहार में कौन सी चीजें आएंगी, जो आठ बातें आएंगी। जब कोई व्यक्ति सच्चाई के प्रति विश्वस्त हो जाता है तब वो सच्चाई के प्रति संदेह नहीं करता, ये हम समझ चुके हैं। जब उसे सच्चाई का एहसास होता है तो फिर वो झूठ की आकांक्षा नहीं रखता। सच्चाई का सम्मान आजकल हम नहीं कर पाते हैं, आप देखिएगा कहां कर पाते हैं। जो सच्चा है उसका सम्मान नहीं होता है, जो झूठ मूठ है उसका बहुत सम्मान है। ईमानदार का सम्मान नहीं है, बेईमानी का सम्मान ज्यादा है। और यदि सम्यक दर्शन हमारे भीतर, यदि इस वास्तविकता का बोध हो गया है तो भले हम बाहर में अप्रिशिएट ना कर पाए लेकिन भीतर अंतरंग में तो यही कहेंगे कि नहीं, सच्ची चीज तो यही है। इतने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता, किसी चलते हुए पशु को यदि मुनि मुद्रा दिखाई पड़ता है या कदाचित जिनन भगवान का दर्शन हो जाए और उसके मन में ये चीज आ जाए कि सच्चा रास्ता तो यही है, हो गया उसका काम तो, और हम यहां पर पोथी लिए बैठे रहें तो भी शायद हमारा काम ना हो पाए। मैं आपसे ये चीज कहना चाहता हूं कि सम्यक दर्शन कोई बहुत बड़ी पोथी में रखी हुई चीज नहीं है, वो हमारे जीवन में घटित होने वाली चीज है। हम अपने भीतर झांक करके देखेंगे कि कैसी है हमारी श्रद्धा, कैसा हमारे भीतर व्यवहार में परिवर्तन आया है श्रद्धा होते ही साथ, हम कितने निशंक हो गए हैं, कितनी हमारी आकांक्षाएं मर गई हैं, अपने आप टूट गई हैं। मैंने दूसरा एक उदाहरण दिया था कि जिस व्यक्ति से हमारा अनुराग होता उसके प्रति हमारा संदेह नहीं होता, बहुत सांसारिक सी चीज। जिस व्यक्ति से अनुराग होता उससे कोई आकांक्षा नहीं होती, वो तो मालूम है कि जो हमारा है तो हमको सब कुछ देगा, क्या आवश्यकता है कुछ मांगने की और क्या आवश्यकता है दुनिया की चीजें की आकांक्षा रखने की। और फिर घृणा कौन करेगा, जिसे सच्चाई मालूम पड़ गई है वो सच्चाई से घृणा थोड़ी करेगा। और सच्चाई के अलावा और बहुत सारे मार्ग जो सच्चे मालूम पड़ते हैं, का पथे पथि दुखा नाम का पथस्थे विसम्मति असंप्रक्ति रणुत्कीर्ति रमूढ़ा दृष्टि रुच्यते, बहुत सारे रास्ते हैं हमारे रास्ते के अलावा, बाकी रास्तों से हमें कोई मतलब नहीं। हम किसी रास्ते को बुरा भी नहीं कह रहे हैं, बस हम अपना रास्ता चल रहे हैं। हम किसी और दूसरे रास्ते पर चलने वाले की न मन से न वचन से न शरीर से कोई प्रशंसा और निंदा, प्रशंसा नहीं करेंगे तो निंदा भी नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना है। तटस्थ हैं हम क्योंकि हमें फुर्सत ही नहीं है। इतनी फुर्सत तो मिल जाए कि हम दूसरे के बारे में हिसाब किताब मिला सके, अपने हिसाब किताब तो दिन भर मिल नहीं पाता है, इतनी फुर्सत कहां है कि दूसरे का हिसाब मिलाते फिरें। वो उसकी जाने, हम तो अपने रास्ते पर चल रहे हैं, होंगे और बहुत अच्छे रास्ते होंगे, लेकिन मैंने जिस पर श्रद्धा की है सच्चे देव गुरु शास्त्र का स्वरूप जान करके, जो मैंने वस्तु के वास्तविक स्वरूप पर श्रद्धा की है, उसके अलावा मुझे और किसी से कोई लेना देना नहीं। ना मन से प्रशंसा का भाव आएगा, ना वचन से हमारे कोई ऐसे वचन निकलेंगे प्रशंसा के, ना हमारे शरीर से हम कोई इस तरह का इशारा करेंगे कि चीज तो वो भी ठीक है, ऐसा नहीं कहेंगे। ना हम निंदा और ना प्रशंसा, ये भीतर अनायास आ ही जाता है। और उसके बाद अपन ने देखा था कि जब हम सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, या कि और जो लोग सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं, वे हो सकता है कि डगमगा जाए, हो सकता है उनसे कोई गलती हो जाए, चूक हो सकती है, हम उस चूक को इग्नोर करेंगे, हम उस चूक को अनदेखा करेंगे, लेकिन भीतर ही भीतर ध्यान रखेंगे कि उस चूक को उसमें से निकालना है, उसका प्रमार्जन करना है, और उसके बाद उसे पुनः दर्शना चरणा द्वापी चलताम धर्म वत्सलैः प्रत्यवस्थापनम प्राज्ञैः स्थिति करणम उच्यते। फिर हमने शायद ये पढ़ा है कि हमें उसे पुनः सच्चे मार्ग पर स्थित करना है। ये सारी चीजें जो मैं दूसरे के सापेक्ष कह रहा हूं, उसको अपने सापेक्ष ले लीजिएगा। हम भी तो कभी कभी सोच के बैठते हैं कि ग्रंथ में तो लिखा हुआ है कि कषाय नहीं करनी चाहिए, और हमने तो दिन भर में बहुत सारी कषाय कर ली, हम विचलित हो गए कि नहीं हो गए मार्ग से, हम अपने को पुनः स्थित करते हैं उसी मार्ग में। तो सम्यक दर्शन से हमारी श्रद्धा अगर कहीं कमजोर पड़ जाती, दूसरे की पड़ जाए तो उसको भी संभालना, और अपनी श्रद्धा भी कहीं डगमगाने लगे तो अपनी श्रद्धा को भी, अपने ज्ञान को भी, और अपने आचरण को, और तीनों दर्शना चरणा द्वापी, दर्शन से आचरण से कोई व्यक्ति भ्रष्ट होता हो गिरता हो तो उसे संभालना, और स्वयं भी अगर दर्शन और आचरण से, श्रद्धा और आचरण से अगर कहीं हम स्वयं गिरते हो तो अपने को संभाल लेना। धर्म वत्सल, कौन सी चीज संभालेगी, वो नहीं होगा तो कोई भी नहीं संभालेगा। धर्म वत्सल, धर्म के प्रति हमारा वात्सल्य है, इस वजह से, क्योंकि धर्म बिना धार्मिक के नहीं रहता। अगर हम धार्मिक को नहीं संभालेंगे तो धर्म कहां पोथी में मिलेगा क्या, वो तो जीवन में मिलता है, किसी ना किसी के जीवन में घटित होगा तब मिलेगा। तो ऐसा हमने स्थितिकरण भी समझा था। स्थितिकरण के बारे में एक बहुत छोटी सी बात आपसे कहूं कि जो भटक जाता है शायद संभालना तो उसे ही पड़ता है, और हम लोग तो संभले संभलाए को संभालने की कोशिश करते हैं। हम लोग क्षमा उससे मांगते हैं जिसके प्रति हमारी कोई भूल नहीं होती, जिसके प्रति हम गलती खाते हैं, जिसके प्रति हमारी नाराजी है, उसके दरवाजे पर जाकर के हम कभी क्षमा नहीं मांगते हैं। हम क्षमा उन्हीं के कार्ड उन्हीं को डालते हैं जिनसे हमारा प्रेम है, जिनसे हमारी मैत्री पहले से ही है, जिनसे हमारा झगड़ा है उनसे डालते हैं क्या, जिनसे कई वर्षों से झगड़ा चल रहा है, बोलचाल ही बंद है, उनके एक ठो लेटर छोड़ते हैं कि क्षमा करिएगा। यही चीज तो हमारे सम्यक दर्शन को प्रकट करती है कि हमारे भीतर कितना धर्म वत्सलता है या नहीं है, कितना स्थितिकरण का हमारा रुझान है कि नहीं। ये सारी चीजें मानिए सम्यक दृष्टि में अपने आप प्रकट होंगी। इनके होने से सम्यक दर्शन डिसाइड नहीं होता, लेकिन सम्यक दर्शन होने से ये डिसाइड हो जाता है कि ये सारी बातें आनी ही चाहिए। अगर ये नहीं है तो सम्यक दर्शन पर प्रश्न चिन्ह लगाऊंगा। अभी देर है, अभी सिर्फ भूमिका बन गई हो सकता है, लेकिन सम्यक दर्शन हो जाने के बाद तो ये आठ बातें आपो आप आती हैं, ऐसे चली आती हैं जैसे कि गाड़ी निकलती जाती, पीछे रेखा बनती चली जाती, ठीक ऐसे ही चली जाती है। स्थितिकरण ऐसी चीज है। मैं आपसे कह रहा था कि एक गड़रिया था, वो अपनी बकरियां चराता था, भेड़ें चराता था। तो जब सारी भेड़ें वापस लौट के आ गई 7:30 बजे, वो भी आ गया, तो उसने देखा कि एक छोटी सी भेड़ तो गायब है, मेमना तो है ही नहीं, कहां चला गया। तो गया वो जंगल में लालटेन लेकर के, खोज रहा है, आवाज दे रहा है कि कहां है भाई। तो उसकी आवाज सुन करके दूर कहीं पर वो भी रास्ता भटक गया था मेमना, उसने भी आवाज दी, तो ये झट से वहां पहुंचा और उसको दुलार करके और कंधे पर बिठाल करके लालटेन लेकर के वापस आ गया। घर के लोगों ने जैसे ही देखा कि कंधे बिठाल के ला रहा है, तो उनको तो अपेक्षा ये थी कि कान पकड़ के खींचते हुए ला रहा होगा, पर ये कंधे बिठाल के ला रहा, तो उसको लाना दिया कि जिसने 7:30 बजे से आज 12 बज रहे हैं रात के, बड़ी मुश्किल में तो मिला है, और उसको तुम जो है कंधे बिठाल के ला रहे, उसको तो मार पीट के और थप्पड़ लगा के और कान पकड़ के ले आना था वहां से। क्यों, भटक गया था ना, इसलिए उसके साथ ऐसा व्यवहार करना था तुम्हें, उसने बहुत परेशानी में डाला है। तो उसने यही जवाब दिया था कि नहीं, जो भटक गया है उसे ही तो कंधे पर उठा करके सच्चे रास्ते पर लाना पड़ेगा। ये दृष्टिकोण ही हमारे भीतर नहीं आ पा रहा है। जो भटक गया है उसको हम गाली देना तो शुरू कर देते हैं, जो भटक गया उसकी निंदा तो करना शुरू कर देते हैं, चार लोग बैठ करके जो भटक गया होगा उसकी चर्चा भी करना शुरू कर देंगे, लेकिन कोई उसमें से आगे बढ़ करके ये नहीं कहेगा कि डोंट वरी आई एम विद यू, आप बिल्कुल मत घबराइएगा, आप अपनी श्रद्धा मजबूत रहिए रखिएगा, आप मैं आपके साथ हूं, आपके साथ आपकी श्रद्धा है, आप घबराइएगा मत। क्या हम ऐसा नहीं कह सकते हैं? ये दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हमारा दृष्टिकोण पवित्र है तब तो हमसे ये सारी चीजें आसानी से हो जाएंगी, वरना भैया ये सिखाने की चीजें तो है नहीं, कोई को मार पीट करके। और देखिए, गुस्सा तो सिखाया जा सकता है, लेकिन अनुराग और प्रेम नहीं सिखाया जाता, वो सिखाने की चीज नहीं है। झूठ तो सिखाया जाता है, सच्चाई सिखाने की चीज नहीं है। झूठ बोलना हम बेटे को सिखाते हैं, और कभी सच बोलना, क्योंकि वो सिखाया नहीं जा सकता, वो तो सिर्फ रियलाइज किया जा सकता, वो तो सिर्फ फील किया जा सकता। आपको झूठ सिखाने की बात कहूं, आपको आश्चर्य होगा कि हम कैसे झूठ सिखाते हैं। हम तो बचपन से झूठ सिखाते हैं उसको। वो भौवा वाला मामला, पेंसिल हाथ में लिए हैं, अब हंसवाना है, लेकिन हंसी हंसी में क्या होता है, पेन हाथ में लिए, बेटा हंस रहा है, खेल रहा है, उसके हाथ से पेन ले लिया, वो हौवा बाबा ले गया। अब हौवा बाबा कौन सी चीज है? अब वो हौवा बाबा पीछे उसने छुपा ली है, अब वो सोच रहा है कि ये मामला क्या है, ये भी झूठ बोलते मेरे से, पेन हाथ में और कह रहे हैं हौवा बाबा ले गया है। अब अगली बार जब उसका मन थोड़ा बड़ा होता है तो फिर आपने मान लो अपनी घड़ी बाथरूम में नहाते हुए उतार दी और आप ऑफिस चले गए, और फिर आपको ख्याल नहीं रहा, अब वो हौवा बाबा आएगा और वो ले लेगा, रख लेगा वो। अब शाम को आप जब लौटेंगे या कि बीच में ही आएंगे कि कहां है बेटे, तुम्हें मालूम है क्या? हमें नहीं मालूम, जबकि उसी ने बाथरूम में से उठा के अपने बस्ते में रख ली है। क्या अपन पिताजी को भी बताएंगे कि हुआ बाबा क्या चीज होती? आपने हमको उस समय बुद्धू बनाया था, हम भी बनाएंगे। देखिए, एक बहुत सीधी सी चीज है, बच्चे फॉलो करते हैं, और हम बच्चों को बचपन से ये सिखाते हैं, झूठ सिखाते हैं। झूठ आसानी से सिखाया जा सकता, सच्चाई सिखाई नहीं जाती। इसी तरह से जो भी बुराइयां हैं वो तो आसानी से व्यक्ति सीख जाता है, अच्छाइयों के लिए तो बहुत मुश्किल लगती है। इसलिए अच्छाई ना सिखा करके कम से कम इतना कर लें कि बुराई ना सिखाएं तो अच्छाई तो बनी रहे। किसी ने लिखा है कि मुझे मुक्त होने का उपाय बताइएगा, तो उन्होंने कहा कि अच्छा, मुट्ठी खोलने का उपाय बताऊं, बांधते क्यों हूं, वो तो खुली हुई है। आप बांधते हैं, आप ये छोड़ दीजिए, बांधना छोड़ दीजिएगा तो मुट्ठी तो खुली हुई है। आप बंधन में पड़ना छोड़ दीजिए, आपकी मुक्ति डेफिनेट है, आप मुक्त हैं। बंधन आप स्वीकार करते हैं, अपने आप स्वीकार करते हैं, इसलिए आप मुक्त नहीं हो पाते। मुक्ति का कोई उपाय नहीं करना पड़ता, शायद बंधन नहीं बनाने का उपाय करना पड़ता, वीतराग होने का कोई उपाय नहीं करना पड़ता, राग द्वेष छोड़ने का उपाय करना पड़ता। और शायद इसीलिए फिर आचार्यों को लिखना पड़ा कि राग द्वेष घटावने के श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन, राग द्वेष घटावने के ज्ञान का नाम सम्यक ज्ञान, और राग द्वेष घटावने की क्रिया का नाम सम्यक चारित्र है, और कुछ नहीं है, कोई परिभाषा नहीं, बड़े से बड़ी परिभाषा। तो हम देखें कि हमारे भीतर कितनी चीजें आई हैं। आज इतनी चीजें तो इतने दिनों में आई जाना चाहिए। हम बहुत निस्संदेह होकर के अपने मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ें। भगवान के एवज में हम किसी दुनिया की चीज की आकांक्षा ना करें। हम जो सच्चे रास्ते पर चल रहे हैं उनसे घृणा ना करें। हम सच्चे रास्ते के अलावा और बहुत से रास्ते होंगे उनमें भ्रमित ना हों। उनकी हम मन वचन काय से भी प्रशंसा और निंदा ना करें। और कोई अगर सच्चे रास्ते पर गिरकर चलते चलते भूल चूक करता है तो हम उसको इग्नोर करें, उसका प्रमार्जन करें। अगर वो गिर ही जाता है तो हम उसे उठा लें और उसके साथ चार कदम चलें। और आज कहते हैं कि जो व्यक्ति सम्यक दृष्टि होगा उसके भीतर प्राणी मात्र के प्रति वात्सल्य आ जाएगा। वात्सल्य के मायने क्या होता है? वत्सल भावो वात्सल्यम। वत्सल जैसे कि गाय का बछड़े के प्रति वत्स कहलाता, गाय के बछड़े को वत्स बोलते हैं। जैसा निस्वार्थ प्रेम होता है ऐसा प्रेम साधर्मी के प्रति होना चाहिए। जो सच्चे देवगुरु शास्त्र को व्यवहार से भी स्वीकार करता है उसके प्रति होना चाहिए। आज इसमें भी थोड़ी सी क्या कमी तो आई है, जिससे हमारा स्वार्थ सत्ता है, जिससे हमारे विचार मिलते हैं उससे तो हम बड़ी जल्दी वात्सल्य कर लेते हैं। बाकी के प्रति हमारा वात्सल्य जो प्राणी मात्र के प्रति होना चाहिए था वो धीरे धीरे कम होता जाए। साधर्मी सो गोवच्छ प्रीति सम, रोज पढ़ते होंगे शायद, लेकिन जितनी ज्यादा मम, जितनी ज्यादा तूतू मैं साधर्मी से होती है मेरे ख्याल से और किसी से नहीं होती। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूं, आप सुधार लीजिएगा अगर मैं गलत तो दीजिएगा कि आप ये ठीक नहीं कह रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ घटित होती हैं। साधर्मी से जितना विसंवाद होगा साधर्मी से उतना ही वात्सल्य भी होगा। हमें चुनना क्या है ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। अपने के प्रति हमारी घृणा भी उतनी ही कठोर होती है और अपने के प्रति हमारी आत्मीयता भी उतनी हो सकती है। इसलिए इशारा किया है कि अगर आपकी दृष्टि, जिसकी दृष्टि निर्मल है वो किसी से घृणा कर ही नहीं सकता, वो तो सिर्फ दूसरे से वात्सल्य ही कर सकता है। अब वात्सल्य करने का अपना अपना अलग ढंग होगा। वात्सल्य करने का कैसा ढंग होगा ये चार चीजें ध्यान में रखिएगा। वात्सल्य को एकदम हम डिफाइन नहीं कर सकते आसानी से। कभी कभी उपेक्षा भी वात्सल्य हो जाती है। जब बेटा मां की बात नहीं मानता, मां कहती नहीं बोलूंगी मैं तेरे से, क्या ये वात्सल्य नहीं है? है, इसको सुधारना है। ऐसा करता है, जिद करता है तो अब इसको सुधारने का ये उपाय नहीं बोलते, हम आपसे नहीं बोल, बात नहीं करेंगे हम। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं वात्सल्य छिपा। और अगर घंटे भर के लिए वो कहीं इधर उधर हो जाए तो धड़केगा फिर जी कि कहां चला गया, हम नाक डांट दिया उसको, ये क्या चीज है? ये वात्सल्य कहलाता। सत्वेशु मैत्रीम, जहां वात्सल्य प्राणी मात्र के प्रति मैत्री में प्रकट होता है। वात्सल्य ये है जो प्राणी मात्र से, पापी से भी मैत्री है उसकी। वो कहता है नहीं, जहां जहां सांस धड़कती है वहां वहां मेरी मैत्री है, वहां वहां मेरी मित्रता है, ये वात्सल्य है। गुणिषु प्रमोदम, सब जीवों से सामान्य रूप से मैत्री है लेकिन किसी के गुण ज्यादा हैं तो हृदय भर आएगा देख करके कि अरे आओ, प्रसन्न हो जाएगा। यहां तो हम किसी गुणवान को देखते हैं तो ईर्ष्या हो जाती है कि वाह जय जमे हैं, हमें नहीं पहुंच पा रहे इनकी वजह से, जी हटते तो हम पहुंचते होते तक, ऐसा हो जाता नहीं। हमें हर्षित होना चाहिए कि सौभाग्य कि आप वहां तक पहुंच गए, मैं भी आऊंगा वहीं तक, मुझे भी आना, मैं अपनी योग्यता बढ़ाऊंगा। योग्यता बढ़ाए बिना हम जब कंपटीशन करते हैं दूसरे से तो क्या होता सिवा ईर्ष्या के? कहते हैं कि जिसकी दृष्टि निर्मल है वो तो गुणिषु प्रमोदम, जहां एक भी गुण देखेगा हर्षित हो जाएगा कि अरे वाह मेरा साधर्मी और इतना गुणवान है। और क्लिष्टेशु जीवेशु कृपा परत्वम, ये भी वात्सल्य में ही शामिल है। वात्सल्य होगा साधर्मी के प्रति तो उसकी उसकी असुविधा देख करके, उसकी अज्ञानता देख करके, उसकी कमजोरी देख करके क्या आएगा मन में? कृपा का भाव आएगा, दया का भाव आएगा, इसके बिना बन ही नहीं सकता। दीन दुखी को देख करके मन में दया का भाव आए बिना अगर रह जाता है तो मानिएगा कि दृष्टि में अभी निर्मलता नहीं आई है। अपन रास्ते चले जाते हैं, कितने जीव दीन दुखी दिखाई पड़ते हैं। कई बार मन में आता है कि भोगो अपने कर्म, हम क्या करें? नहीं, ऐसा नहीं आना चाहिए मन में। अगर ऐसा आता है तो सुधार लेना चाहिए। नहीं, उस समय ये आ जाना चाहिए कि देखो तो कैसे कर्म किए होंगे जिसकी वजह से यहां संसार में हर प्राणी यहां पर दुखी है, हे भगवान क्या उपाय करूं कि सबका दुख दूर हो जाए। ये हो गया आपका अपाय विजय नाम का धर्म ध्यान हो गया। और आप आर ध्यान करना चाहें तो आर ध्यान कर सकते हैं, रौद्र ध्यान करना चाहें तो करते ही हैं, वो तो दिन भर ही करते हैं। आसानी से धर्म ध्यान इस तरह हम विचार करके कर सकते हैं। ये वात्सल्य ही है जो कि हमें इस तरह जीवों के प्रति किसी दीन दुखी को देखकर करुणा बदल जाता है, वही वात्सल्य। और फिर माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तो, और जो सच्चे रास्ते पर नहीं चल रहे हैं उनके प्रति वात्सल्य क्या है? उनके प्रति वात्सल्य ये है कि हम उनके मार्ग में इंटरफियर नहीं करते, ना हम उनकी निंदा करते ना हम प्रशंसा करते, तटस्थ रहते हैं और भीतर ही भीतर इस बात की अपेक्षा रखते हैं कि कभी तो ये सच्चे रास्ते पर आएगा, जैसे ही सच्चे रास्ते पर आएगा मैं फिर गले लगा लूंगा इसके लिए, लेकिन अभी नहीं। अभी तो अगर मैं इसको गले लगाऊंगा, लगाने का मन तो है, वात्सल्य तो है, लेकिन अभी लगा लूंगा तो इसके गलत मार्ग की पुष्टि हो जाएगी, ये गलत ही रास्ते पर चलेगा फिर। इसलिए उसके प्रति वात्सल्य यह है कि उसके प्रति तटस्थ रहना, उपेक्षा राग द्वेष दोनों नहीं करना, ना निंदा ना प्रशंसा, ये वात्सल्य। अगर हम इस तरह वात्सल्य को देखें तो बहुत ब्रॉडनेस है इसमें। सिर्फ इतना नहीं है कि हमारे तक ही साधर्मी से मतलब, हमने अकेले भैया जैनी भाई हैं सो तो वात्सल्य है और जैनी नहीं है सो उनसे हमारा द्वेष भाव में शामिल है। गुणों के प्रति प्रमोद भी शामिल है, और जो अभिनय है जिसको सच्चा रास्ता नहीं सुहाता है, मिथ्यात्व से ग्रसित है, उसके प्रति भी वात्सल्य है, लेकिन राग द्वेष से रहित स्थिति है, वहां हम तटस्थ हैं। इसमें परिभाषा अपन देखते हैं, दोनों परिभाषा देखते हैं। जो कुणदि वच्छल तम तिन्नम साहून मोख मग्गमी सो वच्छल भाव जुदो सम्मादिट्ठि मुने दफो। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की तो वात्सल्य की व्याख्या ये है, समय सार जी में निर्जरा अधिकार में बहुत स्पष्ट। जो कुनदि वच्छलत्तम तिन्नम साहून मोक्ष मग्गमी, मोक्ष मार्ग में स्थित तीनों साधुओं को, आचार्य उपाध्याय और साधु के प्रति जिसके मन में वात्सल्य है, जिसके मन में अनुराग है, वो सम्मादिट्ठि मुने दफ्फो, उससे सम्यक दृष्टि जानना, और जिसकी अभी अनुराग या वात्सल्य नहीं है उसके सम्यक दर्शन का तो अभी को देर है, उसकी दृष्टि की निर्मलता अभी आई नहीं है, वो पर्याय दृष्टि है उसकी, बाहर देख रहा है, वो पर्याय देख रहा है, बाहर की बाह्य क्रियाएं देख रहा है, उसी में अटका है। कभी कभी मन ऐसा करता है कि भाव देखें, सो अपने तो भाव टटोलते हैं और दूसरे की क्रिया देखते हैं, अगर उसमें थोड़ी ऊंच नीच हो जावे तो फौरन द्रव्यलिंगी, देखो तो मजा। ऐसी हमारी दृष्टि है, जल्दी से हो जाती है, थोड़ा सा भी क्रिया में अगर थोड़ा सा भी हेर फेर दिखेगा, है तो वैसे क्रिया बाह्य में, बाहर की क्रिया से क्या लेना देना अपन को, बाह्य क्रिया थोड़ी इंपॉर्टेंस रखती, वो तो अंतरंग के भाव कहेंगे जरूर ये, लेकिन देखेंगे दूसरे की बाह्य क्रिया, और उसमें कोई थोड़ा सा भी अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अनर्गल प्रवृत्ति कोई करता हो और उसका समर्थन करिएगा, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं आपसे, आप बहुत सावधान रहिए, जितने आप आज्ञा प्रदानी रहिएगा उतनी परीक्षा प्रदानी भी रहिएगा, ये भी कह रहा हूं। कसौटी पर कस लीजिएगा, मैं पहले कह चुका हूं कि जिसके चरणों में माथा टेक रहे हैं वे चरण अगर मोक्ष मार्ग की तरफ जाते हैं तो टेकिएगा, वरना मत टेकिएगा, वरना सिर्फ जय जिनेन्द्र, आप भी जिनेन्द्र बनने की योग्यता रखते, मैं भी जिनेन्द्र बनने की योग्यता रखते, इतना ही व्यवहार तो व्यवहार ऐसा होना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि ज्यादा कसौटी पर कसते कसते चीजें हमारे हाथ से चली जाए, ऐसा ना हो जाए, क्योंकि बाह्य क्रिया को कहां तक कसिएगा, अंतरंग के परिणामों को देख लीजिएगा कि अंतरंग में क्या स्थिति है, सात तत्वों का वास्तविक भाव भासना इसको हुई है कि नहीं, इसके प्रशम संवेग अनुकंपा आस्तिक आया है कि नहीं आया है, जो उसका बाह्य लक्षण है, बस इतना ही देखा जा सकता है। तो अपने विचारों को जब हम वात्सल्य करने जा रहे हैं तो कहते हैं तिन्नम साहूनम मोक मग्गमी, मोक्ष मार्ग पर स्थित आचार्य उपाध्याय साधु इतना लिखा उसमें, इनके प्रति जो वात्सल्य रखता है ये निश्चय वात्सल्य का लक्षण है। व्यवहार में तो कहते, इसको पढ़िएगा, अभी पढ़ा नहीं अपन ने, स्वायुख्यान प्रतिसद भाव, खोलिएगा 17 नंबर का है, स्वायुख्यान प्रतिसद भाव सनाथापेत कैतवा प्रतिपत्तिर्यथा योग्यम विलप्यते। स्वयूथ्यान प्रति, यूथ का मतलब होता है समूह, स्वयूथ्यान मतलब अपने जो सहधर्मी बंधु हैं उनके समूह उनके ग्रुप के प्रति है, स्वयूथ्यान प्रति सद्भाव, उनके प्रति हमारी भावना पवित्र होनी चाहिए। दूसरा चाहे कितना भी अपवित्र हो, हमारी भावना पवित्र हो तो हमारा लाभ। एक व्यक्ति बोले कि शांति नहीं है, हमने कहा आपके भीतर नहीं है कि घर में नहीं है? बोलते घर में बिल्कुल शांति नहीं है। हमने कहा आप तो शांत रहना सीख लीजिएगा, वो सब अशांत है, आप शांत रह जाइएगा तो आपका काम निपट जाएगा, और अगर आप अशांत हैं वो सारा घर आपने शांत कर लिया तब भी कुछ नहीं होने वाला। और यही स्थिति यहां पर, अच्छे भाव कितना भी मलिन हो कोई, लेकिन हमारे परिणाम उसकी मलिनता से मलिन ना हो, इतना हमें ध्यान रखना। कह रहे हैं सद्भाव, जो साधर्मी है उसके प्रति हमारा सद्भाव, और कैसा अपेत कैतवा, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी मायाचारी के, अपेत कैतवा, छल से रहित निश्चल व्यवहार। ये निश्चलता आना बहुत कठिन होती है, बीच में कहीं ना कहीं छल आ ही जाता है, वो छल मोह की तरह भी आ जाता है, उसका ही एक रूप है। जब तो लिखना पड़ा कि फैले प्रेम परस्पर जग में, मोह दूर पर रहा करे। वात्सल्य की बात कर रहे हैं लेकिन साथ में ये भी कह रहे हैं कि प्रेम तो सबके बीच फैले पर मोह दूर, मोह जो हमें बंधन में डाले, जो मूर्छा करे, मूर्छित करे, जो वास्तविकता से हमें विमुख करे, वो सब मोह, और जो हमें वास्तविकता के साथ जो एक आत्म तत्व के प्रति जो हमारी आत्मीयता होती है, हर व्यक्ति के भीतर जो आत्मा बैठी हुई है जिसमें परमात्मा बनने की शक्ति, उसके प्रति जो अनुराग है, वो प्रेम की बात है। यहां पर फैले प्रेम परस्पर पर मोह नहीं होना चाहिए। मोह तो हम अपने भ्रम की वजह से करते हैं, और प्रेम जो है वो वास्तविकता के प्रति अनायास हो जाने वाली चीज है, वो हमें बंधन से मुक्त करती है। मोह हमें जहां जहां आपको ग्रिप मालूम पड़ने लगे, जहां जहां पजेसिवनेस मालूम पड़ने लगे, जहां आपको बाइंडिंग जैसा लगने लगे, समझिएगा वो संबंध सब मोह का है। बाइंडिंग नहीं होनी चाहिए संबंध में। और अगर आप फ्री हैं और फिर भी आपके बीच संबंध है, हमारा भगवान से क्या संबंध है बताइए? क्या संबंध नहीं है? है संबंध, लेकिन कितना मजे का है, कोई बाइंडिंग नहीं है। जाना हो तो जाओ दर्शन करने, नहीं जाना हो तो मत जाओ दर्शन करने, आपकी मौज आपकी मर्जी। देखिए कितना आसान है। ये कहलाता कि पहले प्रेम पर, ऐसा प्रेम जो कि हमें मुक्त कर रहा है, जो हमारी स्वतंत्रता को जरा भी प्रभावित नहीं करता, हमें स्वतंत्र बना रहने देता। वो कह रहे हैं कि अपेत कैतवा, बिना किसी छल के भीतर मन में कोई छल नहीं आना चाहिए। हम लोग दूसरे से वात्सल्य करते हैं कई बार, आप देखना इस चीज को, कई बार वात्सल्य करते हैं कहीं ना कहीं उसकी अज्ञानता का लाभ उठाने के लिए प्रेम से बात करते हैं। कभी कभी हम अज्ञानता का लाभ नहीं, उसकी सरलता का लाभ उठाने के लिए भी हम प्रेम से बात कर लेते हैं, हमारा वात्सल्य बड़ा दिखाई पड़ने लगता है। कभी कभी हम उसकी मजबूरी का लाभ उठाने के लिए उससे वात्सल्य प्रकट करते हैं। ये वात्सल्य पता नहीं किन रूपों में हमारे सामने आएगा, इसलिए बहुत सावधानी की आवश्यकता। एक एक शब्द कह दिया अपेत कैतवा, ध्यान रखना उसके पीछे कोई छल ना छिपा। हम अपने मित्र को आज बहुत प्रेम से उससे बोल रहे हैं और कह रहे हैं कि आज हम आओ तुम्हें हम फिल्म दिखा के लाते हैं, और इंटेंशन क्या है कि 3 घंटे इसके बर्बाद करूंगा, ठीक से पढ़ नहीं पाएगा तो मेरे से कम नंबर आएंगे। ये कहे का वात्सल्य है? ये वात्सल्य लगता है बाहर से कि अरे वाह बहुत वात्सल्य है इनका, तो बहुत प्यार दिख रहा है इनके प्रति, लेकिन उसके पीछे यदि छल छुपा हुआ है तो वो सम्यक दृष्टि का वात्सल्य तो नहीं हो सकता। वो और किसी का वात्सल्य, सांसारिक वात्सल्य होगा, लेकिन वो पारमार्थिक वात्सल्य तो नहीं होता। पारमार्थिक वात्सल्य तो ये है कि उसके पीछे कोई छल नहीं है, उसके पीछे कोई स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। और यथा योग्यम, जैसी अपनी योग्यता है या सामने वाले की, उसकी योग्यता के अनुसार प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब आदर सत्कार, बताइएगा। शिष्टाचार का पालन भी नहीं कर पाते हैं, आदर सत्कार की बात तो दूर है। अभी तो हम थोड़ा शिष्टाचार भी नहीं कर पाते हैं कि सच्चे देवगुरु शास्त्र के रास्ते पर चल रहा है तो जय जिनेन्द्र तो कम से कम कर ही लें। जय जिनेन्द्र भी नहीं हो पाती है, महीनों महीनों वर्षों वर्षों तक देख करके मुंह उस तरफ फिर जाता है। सच्चे देवगुरु शास्त्र के मानने अकेले वाले के प्रति कह रहे हैं, जिसने अभी कोई व्रत नियम संयम तक नहीं लिया, अनुव्रति महाव्रति की तो छोड़िएगा, उनके प्रति तो कैसा व्यवहार होना चाहिए वो तो आप ही समझिएगा। पर जो एक सिर्फ सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा रखने वाला साधर्म, उसके प्रति कितना वात्सल्य होना चाहिए, यही चीज नहीं आ पाती। और हम अपने सम्यक दर्शन की बात करते हैं, कैसा लगता है, कोई मानेगा क्या आपकी बात? क्या वो है सम्यक दर्शन? है, वाणी में है, अकेले वाणी में सम्यक दर्शन से नहीं, जीवन में सम्यक दर्शन की बात है कह रहे हैं। उसी को वात्सल्य गुण कह रहे हैं, जो कि अपेत कैत्वा है, जिसके पीछे कोई छल नहीं। मैं शायद आपके यहां पहले आया था, 8-10 दिन के लिए मैंने कोई घटना आपको सुनाई थी, मुझे याद नहीं आता है कि सुनाई थी कि नहीं, फिर से सुना देता हूं। अगर नहीं सुनी हो तो रिवाइज कर लीजिएगा, नहीं सुनी हो तो बहुत अच्छा ही रहेगा, और अगर सुनी हो तो फिर से रिवाइज हो जाएगी। कैसा वात्सल्य होता है और हमारे बीच में आज कितनी कमी आ गई है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम लोगों के बीच वात्सल्य नहीं है, है, लेकिन कमी आ गई है। उस कमी का परिणाम क्या हुआ? दूसरा लाभ उठाता है उसका। हमारे धर्म की हंसी होती है कि ये लोग आपस में ही, इनके भीतर आपस में ही नहीं है, इनमें ही कितने धड़े हैं, इनमें ही कितने डिवाइडेशन है। तो ये प्राणी मात्र के कल्याण की बात क्या कर सकते हैं? कोई प्रभावित नहीं होता बातों से। अब सब समझने लगे, सबके पास बढ़िया बढ़िया बातें हैं भैया, सबके पास, हर अपने धर्म का प्रचार करने वाले के पास अच्छी अच्छी बातें हैं। लेकिन वे अच्छी अच्छी बातें जब तक जीवन में नहीं आएंगी तब तक क्या होगा? तब तक कोई नहीं मानने वाला। एक जंगल में दो लोग गए और उन्होंने देखा कि एक छोटा सा पोखर है जिसमें थोड़ा पानी है और उसके किनारे दो हिरण मरे पड़े हुए। बहुत आश्चर्य हुआ उनको, देखा घूम फिर करके, कहीं उसको तीर भी नहीं लगा है, कहीं किसी ने मारा भी नहीं है, फिर कैसे मर गए? तो एक दूसरे से कहता है, खड़ा न दिखे पारधी, लग्या न दिखे वाण, मैं तुमसे पूछूं सखी, किस भी तज्या प्राण। एक व्यक्ति दूसरे से पूछता है कि खड़ा न दिखे पारधी, कोई शिकारी खड़ा नहीं है, इनको वाण भी नहीं लगा है, मेरे समझ में नहीं आता कि इनका मरण कैसे होगा। तब दूसरा वाला देख करके समझ गया था कि बात क्या हुई है, आखिर ऐसी कौन सी बात हो गई है कि ये दोनों ने अपने प्राण छोड़ दिए। उसने भी चार लाइनों में जवाब दिया, जल थोड़िया नेहा घना, जल थोड़िया नेहा घना, लग्या प्रीति का वाण, तूपी तूपी करतगी, दोनों तज्या प्राण। प्रीति का वाण लग गया था, वात्सल्य का, अनुराग का वाण लग गया था, और जल तो थोड़ा था, नेहा घना, लेकिन आत्मीयता इतनी थी कि वो कहता था कि पहले तू पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे, वो कहता था पानी उतना ही है, तू पहले पी ले तेरे प्राण बच जाएंगे। और तू पी करत ही दोनों तज्या। आज हम प्राण लेने तैयार हैं, प्राण देने तैयार नहीं। अपने साधर्मी के प्रति उसको हम असुविधा में देखते हैं तो हमारे यहां सैकड़ों सुविधाएं होंगी, पर उसमें से एक कम करके हम उसको सुविधा नहीं दे सकते हैं। सांसारिक सुविधा नहीं दे सकते, परमार्थ की सुविधा क्या देंगे? कभी आपके मन में आया कि मैं अपने घर से निकल रहा हूं और बाजू में भी कोई रहता है उसको एक आवाज तो दे दूं कि मेरे स्कूटर पर एक सीट खाली है, मैं मंदिर जा रहा हूं, आप चलना चाहें तो चलिएगा, या आपके टाइम के हिसाब से मैं एडजस्ट कर लूं, मैं आपको लेकर के चलूंगा, क्योंकि आपके पास गाड़ी नहीं है, मुझे मालूम है, मेरे पास है। किस वात्सल्य की बात आपसे करें? ऐसा ये वात्सल्य जब तक हमारे जीवन में नहीं आएगा, सम्यक दर्शन की भूमिका ही नहीं बनती। सम्यक दर्शन होने के बाद तो आ ही जाता है। अब तो मैं ये कहूंगा कि ये आठ बातें जिसके भीतर पहले आती हैं उसके सम्यक दर्शन की भूमिका भी बनती है। इतनी मंद कषाय जब तक न हो गए तब तक तत्व का अभ्यास नहीं हो सकता, और तत्व का अभ्यास और मंद कषाय हुए बिना सम्यक दर्शन की भूमिका तक नहीं बन पाती। किसी तीव्र कषाय को कभी सम्यक दर्शन नहीं, जागृत उपयोग होता है, और मंद कषाय होवे, संगी पंचेंद्री होवे, तब सम्यक दर्शन की सिर्फ पात्रता आती है। जिस सम्यक दर्शन को हम पूरे जीवन भी, अगर मैंने कहा था कि व्याख्यात करें तो सिर्फ व्याख्या नहीं हो सकती, जीवन में आना तो बहुत आसान सी चीज नहीं, पर ठीक है, हमारी सच्चे देवगुरु शास्त्र पे श्रद्धा है, इतना ही हमारा सौभाग्य है कि हम वस्तु स्थिति समझते हैं, अब जब होना होगा तो सम्यक दर्शन हो जाएगा। तो हमने तो अपनी तरफ से जितना किया जा सकता था उतना कर लिया, भूमिका बना ली, तो हम अपनी भूमिका तो बना ही लें कम से कम भैया, और जब होना होगा सो ये इस भूमिका के बिना तो नहीं होगा, जिस जिसको भी होगा इतनी भूमिका तो बनानी ही पड़ेगी, उसके बाद ही होगा। ऐसा ये वात्सल्यंग है, और इसके बाद एक और शेष रहा, और फिर तो इसके आठ अंग पूरे हो जाएंगे। प्रभावना, प्रभावना के बारे में मेरा एटीट्यूड, मेरा ही दृष्टिकोण कह लीजिएगा या आचार्यों का कह लीजिएगा, ये जो हम जिस तरह से प्रभावना इन दिनों कर रहे हैं, जो हमारा एक दृष्टिकोण बन गया है कि भीड़ जितनी अधिक होगी उतनी प्रभावना कहलाएगी, भैया इसको थोड़ा सा कम करिएगा। चार लोग भी प्रामाणिक हैं और अपने जीवन को बदलने तैयार हैं तो वे 40 लाख के बराबर हैं। हम चार लोगों को 40 लाख के बराबर कह सकते हैं, ये हमारा एटीट्यूड आज प्रभावना का होना चाहिए। हमारा प्रभावना का मापदंड ही पता नहीं क्या होगा। किसी के भीतर अगर अज्ञान कम हुआ है तो प्रभावना हुई है, और अज्ञान तो ज्यों का त्यों है, बाहर में पहुंच पाच के और सफेद कपड़ा पहनने से अगर प्रभावना होती तो इसको मैं प्रभावना नहीं, बहुत स्पष्ट सी बात कह रहा हूं आपसे, जो मैं वर्षों से देखता आया हूं। हम लोग बहुत जल्दी कहने लगते हैं कि भारी प्रभावना, भारी लोग आ रहे हैं सुनवी खिलाने। अकेले सुनवी खिलाने आए से प्रभावना कहलाएगी क्या? नहीं, आपने परिवर्तन क्या किया? आप जहां खड़े थे वहां ऐसे एक कदम आगे बढ़े कि नहीं बढ़े? आपके जीवन में दृष्टिकोण बदला कि नहीं बदला? वहां से शुरू करिए, दृष्टिकोण से। मेरा आचरण तो बदला लेकिन मेरा दृष्टिकोण, अब हर चीज को मैं दूसरे ढंग से देखने लगा। बस इतना ही हो गया तो आपका इस खुदा की दुनिया को इस तरह न देख, कोई अपनी तर्ज नजर तो ईजाद कर। एक आर्डनरी आदमी लिख रहा है इसको कि इस तरह मत देख जिस तरह देख रहे हैं, इसमें ही रच पच के देख रहे हैं। नहीं, उससे जरूर तटस्थ खड़े होकर के तो देखो इसको कि कैसी है ये। कोई तर्ज नजर अपना देखने का ढंग तो ईजाद करो अपने भीतर, फिर देखिएगा कि कैसे नहीं बदलता जीवन। ये तर्ज नजर है, देखने का ढंग है, सम्यक दर्शन और कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हमने उसी चीज को दूसरे ढंग से देखना शुरू कर दिया, जैसी थी वैसा देखना शुरू कर दिया। अभी तक तो जैसी नहीं थी वैसे देखते चले आ रहे थे, उसी को सच मान रहे। प्रभावना वो कहलाएगी कि हमारा एटीट्यूड चेंज हो गया है, सारा दृष्टि बदली है तो सारी सृष्टि का स्वरूप ही बदल गया है। कह रहे हैं इसमें भी, कह रहे हैं आचार्य महाराज, वैसे तो कुनकुन स्वामी कहते हैं, विद्या रह मारूढ़ो मनो रह रहे सुहनद जो चेदा सो जिन नान पहावी सम्मा दिट्ठी मुनि दम। उसको मुनि जन, ज्ञानी जन, उसको सम्यक दृष्टि कहते हैं। विज्ञा रह मारूढ़ मनोरह रहे सुहनदि जो चेता, अपने मनोरथों को समस्त जिसकी अपनी वलगाएं अपने हाथ में ले ली हो, विज्ञा रह मारूढ़ सम्यक ज्ञान के रथ पर आरूढ़ होकर अपनी समस्त आकांक्षाओं की वलगाएं जिसने अपने हाथ में संभाल ली हैं, वो है प्रभावना अंग को धारण करने वाला जीव। और वही बात यहां भी कह रहे हैं, लगभग वही बात है। अज्ञान तिमर व्याप्ति मपाकृत्य यथायथम् जिन शासन माहात्म्य प्रकाशः स्यात् प्रभावना। अज्ञान तिम्र व्याप्ति, अगर कोई अंधकार है तो बड़े से बड़ा अंधकार अज्ञान का अंधकार है। अगर बड़े से बड़ी कोई हमारी गलती है तो वो हमारा अज्ञान है। हमने जानने की क्षमता होती हुए भी हमने जो प्रयोजन भूत था उससे नहीं जाना और पूरी दुनिया को जान लिया, इससे बड़ा कोई अज्ञान हो सकता है? जो प्रयोजन भूत था जीवन में वो नहीं जाना और बाकी सब जानते हैं। अज्ञान तिम्र व्याप्ति अपाकृत्य यथायथम, इस अज्ञान रूपी अंधकार को जैसी शक्ति होवे आपकी अपाकृत, इसको हटाने की कोशिश करिए। अभी मैं इतने सारे लोग बैठे हैं, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूं कि आपको गलत कह रहा हूं, पर अपन भीतर अपने टटोल के देखें कि अभी किसी इतने ही लोग बैठे हैं और उसमें से किसी खड़े करके पूछा जाए कि व्हाट्स द फंडामेंटल्स ऑफ जैनिज्म, आर यू नो, अपन कहेंगे वो ऐसा है और वो ऐसा, हमारे ऐसा है, हमारे यहां ऐसा नहीं। आप क्लियर बताइए ना, पांच दो मिनट में बताइए, दस शब्दों में बताइए, आपके फंडामेंटल्स क्या हैं जिस पर आप खड़े हुए हैं, जिस पर आप कहते हैं कि मैं मौलिक, हमारा धर्म मौलिक है। आपको अपने फंडामेंटल्स नहीं मालूम, ना अपने बेटे को कभी अपने पास बिठा के आपने कहा है कि ये जो तुम जैन धर्म में पैदा हुए हो इसके मायने जानते हो क्या होता है, इसकी मौलिकताएं जानते हो क्या होता है, किस बेस पर हम खड़े हुए हैं, हमारे धर्म की ओरिजिनलिटी क्या है, ये नहीं मालूम। अज्ञान तिम्र व्याप्ति मपाकृत्य, स्पष्ट कह रहे हैं कि जहां जहां अज्ञान का अंधकार है। कभी किसी ने अपने 8 बरस के बेटे से ये नहीं कहा होगा कि तू नहीं जानता शरीर अलग है आत्मा अलग है, ये एहसास अब तेरे करने का समय आ गया, क्योंकि 8 बरस में सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र तीनों होकर के मोक्ष मार्ग की योग्यता आ जाती है और मोक्ष तक हो जाता है 8 बरस में। इसलिए तुम 8 बरस के हो गए, अब ये तुम्हें आना चाहिए कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है। ये कभी हमने उसको एहसास कराया? किताब पढ़ाई होगी हमने, हो सकता पाठशाला भेज दिया होगा, अपने पास बिठा करके आपने कभी उससे पूछा कि तुम कैसा फील करते हो? आप अपनी ही नहीं करते हैं तो अपने को फंडामेंटल्स क्लियर नहीं है तो दूसरे को क्या फंडामेंटल्स बताइए। इसको बोलता हूं मैं आपकी प्रभावना यह है कि मुझे अब मालूम पड़ गया है कि क्या मेरी वास्तविकता है, मेरा अज्ञान हट गया है मेरी। आप किसी की श्रद्धा पैदा करिए, आप किसी के आचरण को सुधारिए, आप किसी के अज्ञान को दूर करिएगा तो मानेंगे हम कि हाँ आपने वास्तव में प्रभावना की है। अकेले जय जयकार से मेरे ख्याल से ज्यादा नहीं होती, थोड़ी सी होती है, अपना शक्ति प्रदर्शन तो होता है कि हाँ हमारे साथ भी एक बहुत बड़ी माप है कहना चाहिए, और वो सारा माप जो है जिस जगह मोल्ड कर दो उस जगह चला जाता है, उस माप का कोई अपना वो नहीं है। कल के दिन और एक मैंने क्या कहूँगा आपसे कि ऐसी चीज जो कि मोक्ष मार्गी नहीं भी होगा उसके पीछे भी वो माप चला जा सकता है, उसके सुनने के लिए भी चला जा सकता है। जिसने कभी मोक्ष मार्ग जाना नहीं, जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा नहीं हो उसके पीछे भी मौत चला जाता वही, और जिसकी सच्चे देवगुरु शास्त्र के प्रति श्रद्धा है वो उसके पीछे भी चला जाता, उस मौत के बारे में क्या कहिएगा। मैं तो ये सोचता हूं कि जिस व्यक्ति के भीतर, और फिर कहते हैं अपनी शक्ति पूर्वक जितनी शक्ति हो उतनी यथा यथ्यम जिन शासन महात्म प्रभाव स्यात् प्रभावना, जिनेन्द्र भगवान के शासन की प्रभावना करना उनकी प्रशंसा। प्रशंसा क्या करिएगा आप, तो जिसके पास बैठ जाइएगा उससे प्रेम से बात करिएगा, वो कहेगा कि भाई ये तो आदमी जो है धर्मात्मा मालूम पड़ता है, बिना तिलक लगाए लेकिन धर्मात्मा मालूम पड़ता है, इसके बोल चाल से धर्म झरता है, इसके आने जाने से धर्म झलकता है, इसके एक एक आचरण में धर्म झलकता है, ये बात करता है तो ऐसे कि बस। क्या ऐसा नहीं कर सकते हम? वास्तव में प्रभावना तो ऐसी ही प्रभावना है। एक साधु था, मैं आपको उदाहरण देके समझाऊं, वैसे तो मेरे ख्याल से आप इतने समझदार तो हैं, इतने बुद्धू तो नहीं है, आप सब समझ रहे होंगे। मैं सोचता हूँ कई बार कि क्या मतलब है, बहुत सारी बातें आपसे बैठ करके करता हूँ और बताता हूँ, पर मुझे लगता है कि आप समझते होंगे। जो जो जितना झूठ बोल के जानता है वो जानता है कि सच क्या है, शायद सच बोलने वाला नहीं जानता होगा कि सच क्या है झूठ क्या है, लेकिन झूठ बोलने वाला जानता है कि सच क्या है। आप भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि क्या चीजें मुझे करनी चाहिए और क्या चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, इसके बावजूद भी क्या है भीतर, ऐसी ग्रंथि कौन सी पड़ी हुई है, बहुत आश्चर्य होता है। जानित जई चिंतित जई जीव जरा मरण भय दुखई विशेष न विरज जई अहो सुबद्धो माया गंठियो। आचार्यों तक को कहना पड़ा मेरी क्या हैसियत, बड़े बड़े आचार्य लिख करके चले गए, हमारे अपने लिए लिख के चले गए कि ये जीव जानता है देखता है। जानित जई चिंतित जई जीव जरा जरन मरण भय दुख है, जन्म मरण के और जरा के बुढ़ापे के दुख देखता है, लेकिन विशेषु न विरज जई विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। अहो सुबद्धो माया गंठी हो, ये मिथ्यात्व की ये मोह की ग्रंथि बहुत सुदृढ़ है, जिसने बांधी है वो नहीं तोड़ पा रहा है, दूसरा क्या तोड़े। अरे दूसरे ने बांधी होती तो उपाय भी कर लेते, लेकिन खुद अपने हाथ से अपने लिए बांधी और अपन ही असहाय हो गए उसके लिए। इससे बड़ी अपनी क्या दुर्दशा हो सकती है संसार में। अपने खुद के बारे में विचार करिए, मैं भी कर रहा हूं, हम सबको थोड़ी सी दृष्टि मिले और हमारी दृष्टि पवित्र हो, इसके लिए तो इस बार जी जान लगा दीजिएगा कि मेरी दृष्टि निर्मल हो जाए, मेरी दृष्टि में पवित्रता आ जाए, मैं वस्तु स्वरूप को जैसा है जैसा भगवान ने कहा है वैसा मैं समझ सकूं, बस मुझे इस जीवन में और किसी चीज की कोई आकांक्षा नहीं। एक साधु था और निकल रहा था जंगल से, तो एक सैनिक वो प्यासा तड़प रहा था, साधु वहां से निकला तो उसने देखा कि सैनिक तो बहुत प्यासा है। उसने कहा कि मैं आपके लिए क्या करूं, दो बातें धर्म की सुनाऊं उस सैनिक ने कहा कि मुझे धर्म की बातें सुनने की फुर्सत नहीं है, प्यास बहुत लगी, हो सके तो पानी पिला दो। उस साधु ने कहा बिल्कुल अभी पिलाता हूं, और जाकर के जो है उसको पानी पिला दिया। पानी पिलाने के बाद उसने कहा कि सुनो, करवट लेते नहीं बनता, बहुत तकलीफ है, करवट लिवा दो। उस साधु ने धीरे से उसको करवट लिवा दी, थोड़ी राहत मिली। उसने कहा ठंड बहुत लगती है। चद्दर था उसके पास, साधु के पास कंबल था, उसने वो उड़ा दिया उसके लिए। बहुत राहत महसूस हुई, थोड़े पैर भी दबाना शुरू कर दिए उस सैनिक के। अब तो सैनिक जो है रो पड़ा। उसने कहा सुनो, मैंने आज तक कभी धर्म नहीं सुना, लेकिन यदि धर्म ऐसा होता है तो मुझे जरूर सुनाओ। तुम्हारे आचरण में जिस तरह से प्रकट हुआ है धर्म, यदि धर्म ऐसा होता है तो मैं अब तैयार हूं, मुझे धर्म सुनाओ। मैं आपसे प्रभावना की बात कर रहा हूं कि भीतर से अगर धर्म एक बार आपके जीवन में प्रकट हुआ है तो हर आदमी आपसे धर्म की दो बात सुनने के लिए उत्सुक होगा। बड़े वर्णी जी थे, गणेश प्रसाद जी वर्णी, बहुत सरल थे और वचन का होती थी। दोपहर में बुखार बहुत था, 105 चार पांच जने आ गए वचन का को। उनने देख लिया कि ये वचन का को आए, और वो आए थे कि वचन का नहीं होगी, अपन तो बर्णी जी की स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बैठेंगे उनके पास। तो जैसे ही भी आए सुकेल भैया वो चदरा उठाओ, खेस उड़क थे, चुड़लक थे, सो उठाओ चदरा। कहने हाँ, वे लोग समझ गए कि चदरा उठाओ मतलब उड़ के और जी वचन का कर है। कहते यहां आज वचन का नहीं सुनने, हमें आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। हरे कहने हाँ भैया, तुमने हमारे हाथ पे दो रोटी रखी, हमारा मोक्ष मार्ग बनाओ, हम तो तुम्हें मोक्ष मार्ग की दो बातें सुने हैं। ऐसा कहते थे, ऐसे होती प्रभावना, इतना वात्सल्य और इतना अंतरंग में भीगा हुआ भाव, यही वात्सल्य ही प्रभावना उत्पन्न करता है, चाहे साधर्मी के प्रति हो चाहे प्राणी मात्र के प्रति हो। हम दोनों चीजें एक साथ लेकर के चलें, हम प्राणी मात्र के कल्याण की बात भी सोचें, और उसी में तो छिपा हुआ हमारे आत्मा का कल्याण, ऐसी भावना के साथ कि हम सबकी दृष्टि जल्दी से निर्मल हो और हमें मोक्ष मार्ग मिले। बोले आचार्य गुरु और विद्या सागर मुनि।
करने वाला है अथवा वग शिव के निष्कंटक अथ में विषकंटक बोता हूं निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन करते हो करते तत्सेल नदी तट पर करो सल वर्षा की झड़ियों में समतारस पान किया करते सुख दुख दोनों की घड़ियों में अंतर द्वारा जीवानी मानो धरती न कुल बंधन तर तर टूट पड़े खिल जावे अंतर की कलियां I की अविनाश्वर मणिया प्रणाम हे शांति त्याग के मूर्तिमान शिव पथ पंथी गुरुवर प्रकाश देखो आप पर भाष देखो शिव खानी है तो द्रव्य